मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। एफआईएस के आज 29 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक सूचना है और महत्वपूर्ण सूचना है, और खासकर यह महत्वपूर्ण सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एकेडमी के 15 डेज की क्लासेस में आना चाहते हैं। आप सबको मालूम है कि एकेडमी ने अपने 15 दिन की क्लासेस की डेट डिक्लेयर कर दी है, जो 7 मार्च से 21 मार्च तक होंगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उन्हें फीस में 2000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। सूचना यह है कि डिस्काउंट की जो अंतिम तिथि है वह 31 दिसंबर है, यानी कि यूं कह लीजिए कि 2-3 दिन शेष रह गए हैं। अगर आज के दिन को भी आप शामिल कर लें, 29, 30, 31, 3 दिन शेष रह गए हैं, और अगर आज के दिन को खारिज कर दें तो 2 दिन शेष रह गए हैं। यानी कि यदि आप डिस्काउंट का फायदा लेना चाहते हैं तो अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप बकायदे रजिस्ट्रेशन करा करके इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक दूसरी छोटी सी सूचना है। कल मैंने आप सबसे कहा था कि हम लोग समीक्षात्मक आलोचना के बारे में विस्तार के साथ बात करेंगे, और उसके तहत जो एक YouTube पर मेरा लेक्चर डला हुआ है महासागरीय जल की लवणता, इसे आप सब जरूर सुने अगर आप मेरी बात को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो। आज तो मैं इस विषय पर बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास दूसरे बहुत अच्छे विषय हैं, लेकिन एक बात मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा कि लेक्चर सुनने के बाद आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं, इस रूप में कि जब आप इसी चैप्टर को किताब पढ़ रहे थे या किताब में आपने पढ़ा था, और अब जब आपने लेक्चर सुना है तो आपको क्या फर्क महसूस हुआ। देखिए, यह कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, YouTube पर भी बहुत सारे इस तरह के लेक्चर्स इसी विषय पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें भी सुनिए और इसे भी सुनिए, और फिर सुनने के बाद जो आप अंतर महसूस करते हैं प्लीज आप मुझे वो बताएं। ऐसा मैं इसलिए चाह रहा हूं कि जब आप मुझे बताएंगे तो उसके आधार पर फिर मैं आपकी जरूरतों को ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा। हालांकि ठीक है, काफी कुछ मुझे आपकी जरूरतों का आभास है, लेकिन यदि आप सब भी मुझे बता देंगे तो हो सकता है कि मुझे कुछ और नई बातें मिल जाएं, कुछ और नए डायमेंशंस मिल जाएं, और फिर जब मैं अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो उसमें मैं आपकी उन समस्याओं को भी शामिल कर सकूंगा। तो प्लीज इसमें आप सब मेरी मदद करें ताकि मैं आप सबकी और अच्छे तरीके से मदद करने के लायक अपने आप को बना सकूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इस विषय पर बात करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज के रेडियो न्यूज में, यानी कि कल के रेडियो न्यूज में आपने एक खबर सुनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और खासकर किसान आंदोलन के संदर्भ में तो बहुत ही ज्यादा है, कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100वीं किसान रेल की शुरुआत की, किसान रेल चलाई गई है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी, मतलब वो ट्रेन इस तरीके की है कि उसमें जो किसानों के उत्पाद होते हैं, और खासकर ऐसे उत्पाद जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, डेयरी उद्योग हैं, इस तरह के सामानों की ढुलाई होगी, एक स्थान से वो ट्रेन लेकर के चलेगी और फिर बहुत तेजी के साथ तो दूसरे स्थान पर तक पहुंचेगी, और बकायदे इसके जो डब्बे होंगे वो आप यूं कह जी कोल्ड स्टोरेज तरह के होंगे ताकि वो चीज इंटैक्ट रहे, खराब न होने पाए। आपको ध्यान होगा कि जो इस तरह की जो पहली रेल चली थी वो अगस्त में चली थी, इसी सन 2020 के अगस्त में चली थी, और महाराष्ट्र से बिहार के लिए चली थी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर आप देख रहे हैं कि हम लगातार कृषि व्यवस्था में कैसे सुधार हो, हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी कैसे दुगनी हो, इसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं। तो ये जो किसान रेल चली है ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है आपके अपने इस टॉपिक को अपडेट करने के लिए। इससे बहुत 500 लाख टन के लगभग रेलवे के द्वारा वस्तुओं की ढुलाई हो चुकी है। न्यूज में ही आपने एक शब्द सुना होगा, वो है ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल, ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल। ये क्या है? कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के टर्मिनोलॉजी पर पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये एक योजना है, स्कीम है, ऑपरेशन एक अभियान है। इसमें दिया है ग्रीन, ग्रीन का मतलब हो गया हरा, ठीक है, हरा, ठीक है। टॉप, टॉप का मतलब टी ओ पी, तो टी ओ पी किसके लिए है? टी का मतलब है टोमेटो यानी कि टमाटर, ओ ओ का मतलब है अनियन यानी कि प्याज, और पी का मतलब है पोटेटो यानी कि आलू, टमाटर प्याज आलू। तो ये जो स्कीम है ये पहले तीन वस्तुओं के लिए शुरू की गई, टमाटर ऑनियन और पोटेटो। और ये है क्या, ये है कुल मिलाकर के ये कि ट्रेन से जब इन वस्तुओं की ढुलाई की जाएगी तो इनके ढुलाई के रेट जो होंगे उसमें 50% की छूट दी जाएगी। मतलब मान लीजिए कि 1000 रुपए ढुलाई लग रहा है तो किसानों से 500 रुपए लिए जाएंगे। और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो किसान इनका उत्पादन कर रहे हैं उन्हें लाभ पहुंच सके, और जब वो बाहर के मंडियों में जाकर के बेचेंगे तो उनके लिए यह लाभदायक स्थिति में आ सके। तो दोस्तों इसे फिर बढ़ा करके सभी तरह के वेजिटेबल्स के लिए कर दिया गया, सभी तरह के वेजिटेबल्स और फल, मतलब आपके फल फूल सब्जियां, इन सबको ले लीजिए आप। तो अब आप देखिए कि अब आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन टॉप, टॉप का तो मतलब आप समझ गए हैं, टू टोटल, पहले ये टॉप तक के लिए था लेकिन अब सब के लिए कर दिया गया है 50% सब्सिडी। और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हमारे यहां छेड़ा गया है उसके तहत इसे किया गया है। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो हमारे उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, है ना, असम, आपके इधर फिर मेघालय, आप जानते हैं उत्तर पूर्वी भारत, और साथ ही साथ जो हमारे हिमालय के राज्य हैं, है ना, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इन राज्यों में ये जो ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम है ये एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी लागू की गई है। यानी कि हवाई जहाज से अगर सामान भेजा जाएगा तो उसमें भी 50% की छूट दी जाएगी। दोस्तों मुझे लगता है कि इस स्कीम के बारे में आपको जानना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है अपडेट करने के लिए। तो देखिए दो चीजें हो गई, ये किसान रेल हो गई और दूसरी यह ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल, आप इसे अपडेट कर लें। यह खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्रालय है उसकी योजना है। न्यूज में ही आपने एक और शब्द सुना होगा, वाटर मेट्रो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चालक विहीन मेट्रो की कल शुरुआत की दिल्ली के एक छोटे से हिस्से में। मतलब मेट्रो चलेगी लेकिन उसमें उसको कोई चलाने वाला नहीं होगा। देखिए कि हम टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच रहे हैं। इसी में एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, वाटर मेट्रो। मेरी समझ से चूंकि शहरीकरण आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वाटर मेट्रो शब्द भी आपके उसमें शामिल हो जाना चाहिए। और वह यह है कि ऐसे शहर जहां वाटर बॉडीज हैं, है ना, नदियां हैं, समुद्र के किनारे हैं, और जहां इसके जरिए परिवहन किया जा सकता है तो वहां वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी, वाटर मेट्रो। और अभी देखिए हमारे यहां जो मेट्रो चल रही है, मेट्रो रेल जो चल रही है 18 शहरों में चल रही है। मुझे लगता है कि ये डेटा भी आपके काम आ सकता है जब आप शहरीकरण में जो यातायात की समस्याएं हैं या शहरों में जो प्रदूषण हो रहा है उस पर अगर कोई प्रश्न आता है तो आप बड़े तरीके से लिख सकते हैं कि अभी हमारे 18 शहरों में मेट्रो चल रही है और बहुत से शहरों में इसका काम चल रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार भी अब जो लव जिहाद है उस पर अध्यादेश जारी कर चुकी है। लव जिहाद संबंधी जो कानून है अभी अध्यादेश करके उसे लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने भी इसे लागू किया था, क्योंकि लव जिहाद पर काफी कुछ लिखा जा रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हो गए हैं, बस केवल आपकी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स अब आज के मुख्य विषय पर आता हूं, और मुख्य विषय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। न्यूज में आपने सुना होगा कि भारत के हमारे जो 8 समुद्र तट हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। और भारत दुनिया का ऐसा देश, पहला ऐसा देश बन गया है जिसको एक साथ 8 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिले हैं, एक साथ। हमारे जो जावड़ेकर जी हैं, जो पर्यावरण मंत्री, उन्होंने कल ये बात कही, न्यूज में आपने सुना। अब आप देखिए कि ये ब्लू फ्लैग क्या है, इस तरह के भी टर्मिनोलॉजी पर पूछ लिया जाता है। ब्लू किसके लिए इस्तेमाल होता है? जल के लिए, राइट। जब हम कहते हैं नीली क्रांति, तो उसका संबंध किससे होता है? मछलियों के उत्पादन से होता है ना, ब्लू रिवोल्यूशन, जल। ब्लू फ्लैग, अब ये फ्लैग क्या है इसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जल का संरक्षण और सतत विकास, जल संरक्षण और सतत विकास। और ये जो जल संरक्षण और सतत विकास है, इसका जो संबंध है दोस्तों, वो समुद्र से है। समुद्रीय जल का संरक्षण और सतत विकास, इसे हम और भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसके तहत चार के संरक्षण की बात कही जाती है। दो शब्द हैं, एक तो है कि आप उसका संरक्षण कर रहे हैं, मानक जो है चार हैं, वहां के जल की क्वालिटी को आप बनाए रखते हैं। दूसरा यह है कि वहां जो पर्यावरण का प्रबंधन होना चाहिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसे आप बनाए रखते हैं। पर्यावरण संबंधी शिक्षण भी आप कर रहे हैं और पर्यावरण को बचा करके भी रख रहे हैं, उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। ये चार मानक है, इनके आधार पर निर्धारित किया जाता है। जो निर्धारण किया जाता है उसके लिए लिया जाता है कि समुद्र के तट, ये जो चार मानक है कहां कहां लागू होंगे, कि आपके समुद्र तट की स्थितियां क्या हैं। तो हमारे 8 समुद्री तट को मिले हैं, मैं भी नाम आपको बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में दर्ज रहे। दूसरा है कि समुद्र से संबंधित जो भी हैं, जैसे समुद्र में जीव रह रहे हैं, समुद्र में वनस्पतियां भी रहती है, तो इनके संरक्षण के लिए आपने क्या कहा किया है, जिसमें मरीन हम जिसे कहते हैं। और साथ ही साथ जो बोटिंग टूरिज्म होता है, उस बोटिंग टूरिज्म में आप पर्यावरण संरक्षण का कितना ध्यान रख रहे हैं, इसके आधार पर आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब ये जो निर्धारण करते हैं कि कौन लोग इस बात का निर्धारण करते हैं कि इन्हें सर्टिफिकेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो दोस्तों इसमें बहुत ही एमिनेंट लोग होते हैं, इंटरनेशनल लेवल की जो हमारी एजेंसीज हैं उनके बहुत ही जाने माने लोग होते हैं। और जो इसकी जूरी बनती है, उस जूरी में देखिए कौन कौन से और संगठन होते हैं। अगर आपने पर्यावरण विषय पर तैयारी कर ली होगी तो आपके लिए ये संगठन के नाम नए नहीं लगेंगे, नहीं होने चाहिए। एक है यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, कि आपको ये नाम मालूम है। दूसरा है यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये शायद आपको ना मालूम हो क्योंकि ये टूरिज्म से संबंधित है। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, शायद इसका भी नाम मालूम ना हो। और चौथा है, इसका नाम तो आपको मालूम होना ही चाहिए, वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, ये आपको मालूम होगा। तो इनके मेंबर्स होते हैं और ये निर्धारण करते हैं कि फ्लू जो आपको जो ब्लू फ्लैग है वो दिया जाए या नहीं दिया जाए। और इनमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंने नाम लिया भी, एनवायरमेंटल फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, दोस्तों ये डेनमार्क की संस्था है और यही ये ब्लू फ्लैग प्रदान करती है। 1985 में ये शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी फ्रांस से किया गया था, लेकिन ये सिर्फ यूरोप के लिए था। लेकिन 2001 से फिर यूरोप से बाहर की दुनिया में भी इसे लागू कर दिया गया है। दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अब अंत में मैं हमारे जो 8 जो समुद्र तट हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप अलग अलग राज्यों से हैं, अपने राज्य का खासकर विशेष ध्यान रख लीजिएगा और उतना ही आपके लिए सफिशियंट होगा। देखिए जो केरल का है कप्पाड, हो सकता है कि मेरे उच्चारण में थोड़ी सी गलतियां हो जाएं। शिवराजपुर है गुजरात का, घोगला है दीयू का, कासरकोड और पदुबिद्री ये दो समुद्र तट हैं कर्नाटक के, रुसिकोंडा है आंध्र प्रदेश का, गोल्डन है उड़ीसा का और राधानगर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। ये 8 समुद्री तट हैं। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रीपा दहिया, साहिल प्रताप और सगुना श्रीमाली सानंद गुजरात से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।